ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नागरिकता आयन संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक बहुमत से हुआ पारित। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनावों की घोषणा जल्द ही की जाएगी, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा का कथन। ऋण प्रवाह को उत्पादनशील बनाने और आर्थिक स्थायित्व को कायम रखने के लक्ष्य के साथ इस साल की मौद्रिक नीति हुई सार्वजनिक। और चरम आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने। अब समाचार विस्तार से। बहुप्रतीक्षित नेपाल नागरिकता आईन 2063 संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 को प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने पारित किया। बैठक में विधेयक के बारे में धारागत बहस के दौरान उठाए गए सवालों का गृहमंत्री बालकृष्ण खान के जवाब देने के बाद इसे निर्णय के लिए पेश किया गया था। बता दें कि गृहमंत्री खान द्वारा प्रस्तुत नागरिकता संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा की बैठक में बहुमत से पारित हुआ था। इससे पूर्व विधेयक के संबंध में संशोधन प्रस्ताव पेश करने वाले सांसदों ने कहा कि अंगीकृत नागरिकता नेपाल में 7 साल स्थायी निवास करने के बाद ही देने का प्रावधान होना चाहिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के सांसदों द्वारा प्रस्तुत अलग अलग संशोधन प्रस्तावों को बैठक के बहुमत ने अस्वीकृत किया था। विधेयक संबंध में 94 विषयों में 45 सांसदों ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए थे। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक सावन 8 कते रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा ने कहा कि प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के आसन्न चुनावों की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। आज हटौड़ा में नेपाल प्रेस यूनियन के 9वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि आम चुनाव के लिए सरकार आवश्यक तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही देश और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। समारोह में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि संचार कर्मियों के हक हित सुरक्षा और पत्रकारिता की उन्नति के लिए संचार कर्मियों के पेशागत संघ संस्थाओं से सहकार्य कर आगे बढ़ने के लिए सरकार तैयार है। सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री कार्की ने कहा कि नागरिकता वितरण को सहज बनाने के लिए सरकार ने प्रतिनिधि सभा में नए नागरिकता विधेयक को दर्ज कराया है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को जीवंत रखना होगा। नेपाल राष्ट्र बैंक ने आज इस आर्थिक वर्ष के लिए मौद्रिक नीति साझा की है। मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को 7% से अधिक न होने देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। मौद्रिक नीति में नेपाल सरकार के इस आर्थिक वर्ष के बजट में लक्षित 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने और मुद्रास्फीति को 7% कायम रखने का लक्ष्य रखा गया है। मौद्रिक नीति में आर्थिक स्थायित्व को बढ़ाने, वित्त को उत्पादनशील क्षेत्र में लगाते हुए ऋण प्रवाह को उत्पादनशील बनाने, कोविड संकट के दौरान दी गई सुविधाओं की क्रमशः कटौती करने लगात लक्ष्य रखे गए हैं। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति ने स्वास्थ्य बीमा करवा चुके नागरिकों की बीमा की रकम समय पर भुगतान करने की व्यवस्था करने का सरकार को निर्देश किया है। इसी तरह समिति ने नेपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नियंत्रण की ओर ध्यान देने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को निर्देश किया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भवानी प्रसाद खापुंग ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की रकम भुगतान में मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। मंत्री खापुंग ने यह भी कहा कि फिलहाल नेपाल में कोरोना की वैक्सीन की कमी नहीं है। शहीद गंगालाल हृदय रोग केंद्र के कार्यकारी निदेशक चंद्रमणि अधिकारी ने कहा कि दिल के मरीजों की शल्य क्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जनरेटर पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दिल के गंभीर मरीजों की शल्य क्रिया की जा रही है। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 456 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बहरहाल संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर 98.5% है। वहीं आज 3,86,782 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बता दें कि सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,841 हो गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सब सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाकी समाचार. राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आज वेत्रावती स्थित उत्तर गया धाम में पूजा अर्चना की. राष्ट्रपति भंडारी ने नुआकोट और रसुआ की सीमा से सटे उत्तर गया धाम में पूजा करने के साथ ही धाम की स्थिति का जायजा भी लिया. इस दौरान उन्होंने उत्तर गया क्षेत्र के विकास के लिए पहल करने और संघीय सरकार को भी इस विषय में जानकारी कराने की बात कही. प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का 40वां स्मृति दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया. नेकपा एकीकृत समाजवादी ने पार्टी की तरफ से स्थानीय तहों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को स्थानीय उत्पादनों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय उत्पादनों में वृद्धि करने और उत्पादित वस्तुओं का बाजारीकरण करने का निर्देश किया. साथ ही पार्टी ने जनप्रतिनिधियों से जनता के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी बनने और जनता की सेवा को केंद्र में रखकर काम करने का भी निर्देश किया. ये जानकारी महासचिव बेदुराम भूषाल ने दी. विभिन्न देशों में काम करने के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर विभिन्न विदेशी अस्पतालों में इलाज करवा रहे नेपाली श्रमिकों का जायजा लेने, उनके उद्धार में सहजीकरण करने और स्वदेश में लाकर प्रभावकारी इलाज की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया है. ये जानकारी श्रम मंत्रालय ने दी. मोरंग की बूढ़ी गंगा गांवपालिका वार्ड नंबर 2 गंगा चौक में आज भारतीय नंबर प्लेट की ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी. इस दुर्घटना में मोरंग केराबारी गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के 27 वर्षीय हर्क परियार और 21 वर्षीय भीम बहादुर राय की मौत हो गई. ये जानकारी पुलिस ने दी. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में दिनेश गुणवर्धने नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं. राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. 73 साल के गुणवर्धने को अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री बनाया गया था. वे विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था. 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया था. गुणवर्धने रानिल विक्रमसिंघे के सहपाठी रहे हैं. अब दोनों पर श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने का भार है. म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में कानबालू शहर के पास एक गांव में 18 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 400 घर जला दिए गए हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बीबीसी ने बताया कि पश्चिमी सागाइंग क्षेत्र में पिछले साल हुए सैनिक तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों से सेना की लड़ाई तेज हो गई है. समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की सेना को तख्ता पलट विरोधी लोगों के स्थानीय संगठन पीपुल्स डिफेंस फोर्स PDF के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है. किसू गांव के एक व्यक्ति के हवाले से AFP ने बताया कि 18 जुलाई को 2 हेलीकॉप्टरों से सैनिक उतारे गए. मिलिट्री ने गांव में बचे हुए 100 लोगों को कैदी बना लिया. उस व्यक्ति ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में जो बुजुर्ग थे उन्हें अगले दिन छोड़ दिया गया, जबकि कई नौजवानों को अभी भी कैद में रखा गया है. अब मौसम. अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नागरिकता आयन संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक बहुमत से हुआ पारित. प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनावों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा का कथन. ऋण प्रवाह को उत्पादनशील बनाने और आर्थिक स्थायित्व को कायम रखने के लक्ष्य के साथ इस साल की मौद्रिक नीति हुई सार्वजनिक. और चरम आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने. रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए. रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार. शुभरात्रि.